This is VOA News, coming to you by remote. I'm Gene Randall. In some ways, it is the passing of an American icon. U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died at the age of 87 after a long battle with cancer. Ginsburg was appointed by Democratic President Bill Clinton in 1993. She was known as a forceful advocate for women's rights and gender equality, a strong, reliable, liberal voice on the nation's highest court. Chief Justice John Roberts called her a jurist of historic stature, adding, quote, "Today we mourn, but with confidence that future generations will remember Ruth Bader Ginsburg as we knew her, a tireless and resolute champion of justice." Rising from a working-class family in New York City, Ginsburg overcame hostility toward women in the male-dominated legal profession to become something of a folk hero for American liberals. Her admirers simply called her RBG. Just 6 weeks before Election Day, the high court vacancy is certain to touch off a spirited political battle. Republican Senate leader Mitch McConnell insists he will hold a vote on anyone President Donald Trump nominates, even if that is before the election. Mr. Trump called Ginsburg an amazing woman, but has so far said nothing about his plans for replacing her on the bench. Trump's November opponent, Democrat Joe Biden, says the next president must do the selecting. As he put it, the voter should pick the president, and the president should pick the justice for the Senate to consider. In the meantime, the high court vacancy becomes another hot-button issue in Donald Trump's bid for a second term in the White House, with Democrats poised to make it tough for the president and his Republican Party to squeeze in a nomination and a Senate confirmation vote before November. The Trump administration will ban the Chinese apps WeChat and TikTok in the U.S. starting tomorrow night. That will block potential new users from downloading the Chinese-owned platforms over concerns they pose a national security threat. TikTok's parent company, ByteDance, is working on an agreement over the fate of its U.S. operations. Oracle is pursuing such a deal. This is VOA News. The Trump administration says all United Nations sanctions on Iran must be restored today. But 13 of the 15 Security Council members, including longtime allies Germany, France, and Britain, say sanctions relief for Tehran will continue. Observers say it appears few countries are likely to reimpose sanctions, which were lifted under a 2015 deal between world powers and Iran, aimed at preventing Tehran from developing nuclear weapons. In 2018, Donald Trump quit the accord, calling it the worst deal ever. There are growing calls for the British government to reintroduce some national coronavirus lockdown measures sooner rather than later. Yesterday, Prime Minister Boris Johnson said he did not want another lockdown, but that new restrictions may be needed because the country was facing a second wave of COVID-19. New cases have almost doubled to 6,000 a day. The UK has so far lost nearly 42,000 lives to the pandemic, with a case count of 388,000. The worldwide numbers from Johns Hopkins University, 30.5 million infections and 952,000 deaths. Here in the United States, 6.7 million cases and fatalities approach 200,000. Israel is in the first full day of its second national lockdown. It began yesterday with the start of the Jewish high holiday season and is scheduled to last 3 weeks. Israel has reported 179,000 COVID cases and is worried about a sharp rise in new daily cases. The death toll in the Jewish state is put at about 1,200. A senior Iranian health official has declared a coronavirus red alert covering the entire country as daily deaths and cases increase at an alarming rate in Iran. The death toll rose by 144 to almost 24,000 yesterday, while the total number of identified cases spiked to 416,000. India's parliament session that began this week is likely to be cut short after 30 lawmakers were found infected with the coronavirus. This as the number of cases in the country rose to 5.3 million, with 85,600 infections, deaths rather, third highest behind only the United States and Brazil. The United Nations has agreed to step up monitoring of reported human rights abuses in Belarus. During a highly charged debate before the UN Human Rights Council, European ministers denounced the repression of demonstrations since the August 9th elections in the former Soviet Republic. Britain's envoy said the UK would support sanctions. Belarus says the Council's monitoring decision set a dangerous precedent. UN rights investigator Anaïs Marin said action is needed to prevent a major geopolitical rift. She said, quote, "Let's not allow another Iron Curtain to descend on the European continent." More news online at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशर मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा। आज के शो में आप सुनेंगे एंटरटेनमेंट राउंडअप, आपके मैसेजेस, और मारिया आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगी, और बातचीत होगी और गीत सुने जाएंगे गुलूकार रिजवान अनवर के। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस और मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा, और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं गुलूकार रिजवान अनवर की। बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे लिए टाइम निकालने का। ये बताइए कि गुलूकारी के ये जरासीम कहाँ से आए हैं आपने?
मुझे लगता है कि मेरे अंदर गुलूकारी के जरासीम जो है वो मेरी मदर की तरफ से आए हैं, क्योंकि मैंने हमेशा उन्हें बचपन में यही देखा है कि वो किचन में है तो वो कुछ गुनगुना रही हैं, और वो उनकी आवाज़ सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मेरा ख्याल है मुझे वहीं से ये जो है ना मिले हैं।
ये फैसला कैसे हुआ कि इस जानिब आना है?
मेरे दोस्त जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा इनक्रेज करते थे। हम लोग किसी भी गैदरिंग में, कहीं पे पार्टी में, कहीं पे भी बैठते थे, उठते थे, कोई वीकेंड हुआ करता था तो हम लोग म्यूज़िक बजाते थे। और वो जब एक इंसान म्यूजिशियन नहीं है और उसे नहीं आइडिया है तो वो कैसे म्यूज़िक बजाता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होता है नॉर्मली क्या कहते हैं उसे, टेबल बजा के या कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास पड़ी हुई है उसको एक रिदम में बजा के उसके साथ गाया करते थे। तो वो दोस्त मुझे बहुत ज़्यादा वो कहते थे कि आप ज़रा प्रोफेशनली इस चीज़ को देखें, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे भी वैसे नॉर्मली फील हुआ करता था कि यार ये जो लोग गा रहे हैं, OSTs सुन रहा हुआ करता था मैं, या म्यूज़िक कोई भी सुनता था तो उनके साथ जब मैं गाता था तो मुझे यही फील आती थी कि मैं भी गा सकता हूँ और मुझे ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा। तो मैंने फिर उसके बाद एक स्टूडियो में जाके अपनी पहली रिकॉर्डिंग की, तो उसके बाद बूस्ट ही मिल गया बड़ा शदीद किस्म का कि भाई हाँ भाई ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स और फिर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला बन गया बड़ा अच्छा।
जी रिजवान, इस इंडस्ट्री में जहाँ इतना मुकाबला है, इतने चैनल्स हैं और अब तो सोशल मीडिया के जरिए आप कहीं भी पहुँच सकते हैं, तो अपनी जगह बनाना कितना मुश्किल है?
जी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, चैनल्स भी बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप टीवी चैनल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टीवी चैनल्स में इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है ना वो बहुत बहुत कम स्लॉट है, यानी इंटरटेनमेंट साइड पे बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा। और लोग असल में इसीलिए सोशल मीडिया साइड पे जो है ना कन्वर्ट हुए हैं, और सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट को आपके सामने, हम सब के सामने लाने के लिए। तो सोशल मीडिया जितना अच्छा है एट द सेम टाइम उसका उतना ही नुकसान भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को सुनने को मिलती हैं जो कि वायरल हुई होती हैं और वो बिल्कुल बुरी और फजूल चीज़ें होती हैं, और जो डिज़र्विंग जो आर्टिस्ट है फिर उसको इतनी माइलेज या इतना वो पजीराई नहीं मिलती। और यू नो कि लोग उस चीज़ को क्लिक करते हैं जिसके बड़े व्यूज़ हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक तो नंबर्स की गेम नहीं है, ये आपकी आर्ट की बात है जो कि जिसके ऊपर हर इंसान बहुत मेहनत करता है और वो अपना काम करता है और लोगों के सामने लेके आना चाहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैं आपको एक दूसरा रुख दिखा रहा हूँ सोशल मीडिया का, वो ये भी है कि वो कुछ व्यूज़ के बाद डिसअपॉइंट होकर बैठ जाते हैं। तो ये भी सिलसिला है। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना, लेकिन उसके लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को क्या सुनाना चाह रहे हैं, आपके अंदर से दिल से क्या आवाज़ आ रही है, कि आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ आपकी बेस्ट है आप उसे करें, तो ज़रूर आपको एक दिन यू नो कि आप जो चाहते हैं वहाँ पर वो जगह बना सकेंगे।
जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा, तू मेरा ये मेरा ये खुद नूला रे ला बैठा, मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे को मेरा रोम रोम खाली है, मेरे सारे ख्वाब जाली ने, मेरे को
سامعین وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ یہ شو سن رہے ہیں. اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں گلوکار رضوان انور سے اور میں ہوں سعدیہ زبرانجا. رضوان جی بتائیے کہ خود کو مسلسل منوائے رکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟
آپ کو مستقل مزاجی سے کام لینا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی, فوکس کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا چیزوں کو اور بیک ٹو بیک ریلیزز کرنی پڑیں گی. یعنی ریلیزز سے مراد کہ کوئی بھی جو آپ کا کام ہے, آپ اگر ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, میوزیشین ہیں, یعنی آپ پروڈیوسر ہیں, کچھ بھی, اس کے لیے مستقل مزاجی بڑی ضروری ہے اور آپ کو بڑا فوکس کر کے کام کرنا پڑے گا. اور یہ فل ٹائم جاب ہے, یہاں پہ کانسیپٹس تھوڑے ڈفرینٹ ہیں میوزیشینس کے لیے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں, میوزک کو سن کے ان کو اچھے برے کی تمیز آنا شروع ہوئی ہے. جیسے کہ ایک گانا ریلیز کریں, اس کے بعد میرا جو سانگ دوسرا تھا 2011 میں نے لائیں ریلیز کیا, دوسرا سانگ 2013 میں آیا, لیکن اس دوران جو دو سال کا گیپ تھا اس میں بھی لوگ جو ہے نا وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کون ہے, یہ کیا سلسلہ, وہ بھولے نہیں تھے. تو ابھی جو ہے نا وہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بہت زیادہ فاسٹ پیس ہے, اگر آپ ایک دو مہینے غائب رہتے ہیں نا تو لوگوں کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں, اس لیے وہ موو آن, یو نو کہ وہ ویٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو. ایک آدھ دفعہ کہیں گے آپ کے فینس جو بھی ہوں گے کہ آپ کی البم یا نیو سانگ کب آ رہے ہیں, کیا سلسلہ ہے, تو وہ مطلب وہ پھر بھول, یہ جو آج کل کے ٹائم کی بات کرو یہ اس میں تو وہ بالکل بھول جاتے ہیں. تو مستقل مزاجی بہت ضروری ہے میرا خیال ہے. ایک سانگ کے بعد آپ کے پاس ایک مہینے کا گیپ آپ میکسیمم رکھیں, اسی میں اس کی مارکیٹنگ کریں جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر کنٹینیو کریں.
آپ کیسے گلوکار کے طور پر خود کو کلاسیفائی کرتے ہیں؟
میں جو خود کو بہت کوئی بڑا آرٹسٹ نہیں سمجھتا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, اور جو میری پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے بھی کانوں کو میری گائی ہوئی چیز بری نہ لگے. ایٹ لیسٹ اگر وہ اسے بہت پسند نہیں آ رہی تو کانوں کو بری بھی نہ لگے. میں اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. بہت ڈرتا ہوں کوئی بھی چیز ریلیز کرتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ دے میری کوئی چیز, تو میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں اپنے کام پہ.
رضوان کون سی خوبی یا مہارت ہے جو آپ کی گلوکاری کے سفر میں آپ کی مددگار رہی ہے؟
بھائی میں خود کے اندر کوئی مہارت نہیں سمجھتا ہوں, خدا کی دین ہے الحمدللہ. جتنا تھوڑا بہت اچھا برا جیسا بھی ہے وہ خدا کی دین ہے, اس کی جو دیوی عطا ہے اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ میں جو بیسٹ کر پاتا ہوں وہ میں گا سکتا ہوں, اور کمپوزر میں مطلب کمپوز کر سکتا ہوں, سانگز میں لکھ سکتا ہوں. تو یہ عطا ہے اس پاک ذات کی تو جس نے ایک سلسلہ چلایا ہوا.
جا
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں یہ شو اور میں ہوں سادیہ زبران جھا اور آپ گفتگو سن رہے ہیں گلوکار رضوان انور کی. آپ خود کو ایک جینون گلوکار کیسے بنوا سکتے ہیں یا یہ یقینی کیسے بنا سکتے ہیں کہ کسی گلوکار کی چھاپ آپ پر نہ لگے اور ایسا نہ لگے کہ یہ گانا تو کہیں اور بھی سنا ہے؟
بھائی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, جینون سنگر کیسے بنوا سکتے ہیں, یہ جو بات ہے نا یہ تھوڑی سی نا مشکل ہے, کیونکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ صرف میوزک, دیکھیں میرا ماننا ہے میوزک سننے کی چیز ہے لیکن یہاں پہ میوزک جو نارملی ہے نا لوگ دیکھتے ہیں میوزک, تو یہ بڑا ڈفرینس آ گیا ہے. آج سے 15 سال پہلے آپ اگر چلے جائیں گے تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, آپ ایسے ہلکی پھلکی ویڈیو پہ آپ گزارا کرتے تھے, لوگ ماسز میں سنتے تھے, جاتی تھی چیز اور ٹی وی کے تھرو جاتی تھی اور بہت اچھے کام ہوا کرتے تھے, بڑے سمپل سے بڑے خوبصورت سے انٹرٹیننگ بھی ہوتے تھے اور یہ سلسلہ تھا. ابھی لوگ جو ہے نا وہ ایک پتہ نہیں کوئی ایلین دیکھنا چاہتے ہیں, جو کہ دیکھنے میں کوئی شاہ رخ خان ہو اور گانے میں آواز اس کی محمد رفیع یا سکھوندر جی کی آواز ہو اور اس نے کپڑے فلانے برانڈز کے پہنے ہوں اور لڑکی کوئی ایسی حسین ہونی چاہیے کہ وہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو میوزک کو سننا چاہیے اس, کیونکہ لوگ وہ میوزک سننے کی چیز ہے, دیکھنے کی چیز بالکل نہیں ہے. چونکہ آج کل ضرورت ہے تو پھر ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے, ہم لوگ کام کرتے ہیں اور بڑا ٹھیک ٹھاک کام ہوتا ہے, ایک 3 یا 4 یا 5 منٹ کے گانے کے پیچھے بہت سارا کام ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں, اور ایک لمحے میں یعنی کہ ایک 10 سیکنڈز میں آپ جج کر لیتے ہیں کہ یار یہ تو فارغ ہے یا یہ بہت اچھا ہے, تو تھوڑا سا ایک دفعہ اسے سننا چاہیے. کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو ٹائم انویسٹمنٹ ہے بہت بڑی جو کہ ہم کرتے ہیں اس کام کے اندر, اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ آبویسلی آپ کے پیسے بھی لگ رہے ہیں, اسٹوڈیوز ریکارڈنگ شفٹس آپ لیتے ہیں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سب ساتھ, تو اس کے بعد پھر آپ ویڈیو پہ آتے ہیں, ویڈیو کے بعد پروموشنل سٹاف اور یہ ساری چیزیں, ان سب چیزوں کے بعد آپ کی ایک پروڈکٹ تیار ہوتی ہے, آپ مارکیٹ میں ریلیز کرتے ہیں, تو اس کو ایک دفعہ سنیں ضرور. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھاپنے والی بات نہیں ہوتی ہے بھائی, 700 ہیں, 1 کروڑ سے بھی زیادہ گانے ہیں. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ ایک انسان کے دماغ میں ایک میلوڈی یا ایک دھن آئی ہے, وہ کسی دوسرے انسان کے دماغ میں بھی آ سکتی ہے, تو یہ چھاپنا نہیں ہوتا ہے. انسان جو جان بوجھ کے کرتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ آپ کو پتا ہوگا کافی ساری انڈسٹری میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ جان بوجھ کے نظر آ رہی ہیں کہ بھائی یہ بالکل اس سے چھاپا گیا, لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں کبھی کمپوز کر رہا ہوتا ہوں تو یہ جو آپ کی بات ہے ویسے یہ بڑی صحیح ہے کہ مجھے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میری میلوڈی کسی کے ساتھ بالکل ایگزیکٹ ویسے جا تو نہیں رہی, اور کہ وہ کمپوز کرنے میں چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن جان بوجھ کے کرنا ہے سم تھنگ ڈفرینٹ.
ابھی تک آپ کی کون سی پرفارمنس کو آپ بہترین سمجھتے ہیں؟
میرا ایک اوریجنل سانگ تھا نیسکیفے بیسمنٹ سیزن 4 میں آیا تھا, اس کا نام تھا تو میرا نہیں, وہ مجھے لگتا ہے اب تک کی بیسٹ پرفارمنس تھی جو میں نے دی وہاں پہ, اور مجھے بڑا اچھا لگا, کانفیڈنس ملا وہاں پہ, بہت زیادہ اچھے لوگ اچھے ٹیلنٹڈ میوزیشین سے میری ملاقات ہوئی, ان میں بہت سارے نام ہیں, لیو ٹوینز ہیں, ان میں سپتین خالد ہیں, حمزہ تنویر ہیں, بلاول لاہوتی ہیں, یہ ابھی انڈسٹری کے اچھے نام ہیں, یہ بالکل وہ ایسا پلیٹ فارم تھا جو کہ ہمیں زلفی بھائی نے موقع دیا اور ہم لوگوں نے وہاں پہ پرفارم کیا, بہت اچھا ایکسپیرینس اور بہت زیادہ مزہ آیا, اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا بیسٹ ایکسپیرینس ہے اور پرفارمنس ہے وہ, تو میں نے اسے بہت انجوائے کیا تھا.
اچھا یہ بتائیے کہ گلوکار پیدائشی ہوتا ہے یا اسے آپ سمجھتے ہیں کہ پالش کیا جا سکتا ہے؟
تو جی گلوکار پیدائشی ہوتا ہے, یہ بات آپ مان لیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بالکل جیسے کلاسیکل گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں, تو اگر تو کوئی پیدائشی نہیں بھی ہے یعنی کہ وہ اس کے گلے میں سر نہیں بھی ہے تو وہ پریکٹس اس طرح کی کرواتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں, تو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کی کیا پریکٹس ہے, اور مطلب ایسا بھی ہے کہ جیسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایک لفظ نہیں سیکھا کسی سے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمد للہ, جو مجھے سمجھ آتا ہے, مین چیز جو ہوتی ہے گائیکی میں وہ آپ کی ٹیمپو ہوتی ہے کہ آپ ایک ردھم میں گا رہے ہیں یا نہیں گا رہے ہیں, یا گا سکتے ہیں یا نہیں گا سکتے, اس کی پریکٹسز ہیں, اگر تو آپ کی اس پریکٹس سے بھی وہ ردھم ٹھیک نہیں ہوتا, ٹیمپو صحیح نہیں گا سکتے, تو آپ کا پیدائشی سنگر ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ بے سرا بے شک چل جاتا ہے لیکن بے تالا کبھی بھی نہیں چلتا, तो माई पॉइंट इज़ कि पैदाइशी सिंगर होते हैं और वो आपके सामने जिंदा मिसालें हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी शायद प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा और आज वो इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। कुछ गिफ्टेड होते हैं और मैं नाम ले सकता हूँ, आपके पास बड़े अच्छे सिंगर हैं, मोहसिन अब्बास हैदर, आपके पास हमज़ा तनवीर हैं, और उसके बाद सिप्तैन खालिद हैं, बहुत सारे लोग हैं। नहीं, आप यू नेम इट, आपके पास बहुत सारे ऐसी लिस्ट निकल आएगी जो कि नहीं सीखे हुए लेकिन ये कि वो गिफ्टेड हैं, पैदाइशी मैं उन्हें कहूँगा पैदाइशी सिंगर हैं।
आपको मजमे के सामने गाना अच्छा लगता है या रिकॉर्डिंग पसंद करते हैं?
लाइव किसी के सामने ये एक मजमे में परफॉर्म करना, तो एक सिंगर की जो है ना वो जो है ना जो आखिरी जो ख्वाहिश जिसे कह सकते हैं वो यही होती है कि वो अपना आर्ट उन लोगों को सुना रहा है जो उसे सुनने आ रहे हैं। और वो ये बेस्ट पार्ट होता है कि आप रिकॉर्डिंग्स और ये सारा कुछ अपनी जगह पे बहुत अच्छी चीज़ है, बट जब आप कुछ सुनने के लिए कोई आया और आप मजमे के सामने गा रहे हैं तो वो तो कहानी कुछ डिफरेंट है ना, वो तो नेक्स्ट लेवल है सर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं गुलुकार रिजवान अनवर की। रिजवान, खुद कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? किसी गुलुकार को खास तौर पर सुनते हैं और मौसीकी के खुद आप कितने दिलदादा हैं?
मोहम्मद रफ़ी वाहिद इंसान है शायद जिनकी वजह से मैं अभी तक गा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले उनका कोई एक गाना सुना था तो मुझे वो आवाज़ इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने शायद मुझे शौक ही पड़ गया कि भाई मैं भी गाने सुनूं यार, ये तो बड़ी चीज़ ज़बरदस्त चीज़ है। तो मोहम्मद रफ़ी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, उन्हीं का म्यूज़िक सुना मैंने बहुत सारा और उन्हीं को सुन सुन के मैंने प्रैक्टिस किया और मैंने जितना जो थोड़ा बहुत आप लोगों को जो मुझसे सुनते हैं वो मैंने सब उन्हीं से सीखा और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ स्टिल। उसके बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उसके बाद सोनू निगम जी, सुखविंदर सिंह फेवरेट है, ये तो किसी को भी बुरे नहीं लग सकते, बहुत अच्छे हैं। मैं खुद कोई भी म्यूज़िक सुन लेता हूँ, गज़ल भी सुन लेता हूँ, लाइक कोई पॉप सॉन्ग अच्छा आया है वो भी सुन लेते हैं, हर किस्म का म्यूज़िक सुनता हूँ। उससे ये है कि कंपोज करने में ना ज़रा वैरायटी रहती है कि आप थोड़ा सा खेल सकते हैं राइट लाइन। तो मुझे कोई भी म्यूज़िक जो है ना वो बोर नहीं करता, मुझे हमेशा म्यूज़िक सुन के हमेशा अच्छा ही लगता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़िब्रान झा और आप गुफ्तगू सुन रहे हैं गुलुकार रिजवान अनवर की। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपकी फैमिली में आपका सबसे बड़ा परिस्तार कौन है?
हम पांच भाई हैं, मेरी एक सबसे बड़ी बहन है और भाइयों में मैं तीसरे नंबर पे हूँ, मुझसे दो छोटे भाई हैं और दो बड़े भाई हैं और वाहिद मैं हूँ जो म्यूजिक करता हूँ और वो सब मेरे सब बहुत प्यार करते हैं सब और मेरा म्यूज़िक सुनते हैं, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। कुछ उनमें से एक दो भाई ऐसे हैं जो कि उनको ज़्यादा म्यूज़िक का पता नहीं लेकिन वो मैं कुछ भी कहता हूँ, वो कहते हैं यार तुमने बहुत अच्छा किया, बेस्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो यू नो कि ऐसे मेरे मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया म्यूज़िक के लिए, मेरी मदर ने किया, सब ने, किसी ने कोई रोक टोक नहीं दी। और सबसे बड़े फैंस जो होते हैं ना, वो आपके करीब के सब लोग होते हैं, और यू नो आपके घर वाले स्पेशली, और आपके दोस्त जिन्होंने आपको मतलब एक इनक्रेज किया होता है एक काम करने के लिए। तो मेरे सबसे बड़े फैंस ये हैं, कुछ और बहुत सारे फैंस हैं जिनके मैं नाम नहीं शायद ले सकूंगा, बहुत सारे हैं जो कि बड़ा प्यार करते हैं, जिनकी वजह से शायद अभी तक म्यूज़िक किया भी जा रहा है मेरी तरफ से थोड़ा बहुत जो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन लोगों के प्यार की वजह से। और इसी तरह ही करता रहूँगा, इसी तरह ही इंशाल्लाह ताला आपको सुनाते रहेंगे अच्छे अच्छे गाने, और कोशिश है।
अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ रहे, पाकिस्तान में रहने के लिए कौन सा शहर आपको पसंद है?
तालीम पे कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, देखें एक जो शैतान बच्चा होता है ना एक घर में, वो मैं था, पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था। मैंने फिर भी समहाउ जो है ना अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है, उसके बाद मैंने कहा बस इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं उस पर फोकस करता हूँ, तो वो म्यूज़िक था और वो जो मैं आज तक कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी यूरोप साइड पे परफॉर्मेंसेस, राइट लेफ्ट हर जगह भी मैंने काफ़ी, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा की हैं। और यह है कि बड़ा इन्जॉय करते हैं हम लोग म्यूज़िक को, म्यूज़िक को इन्जॉय करना चाहिए। अगर तो म्यूज़िक के साथ आपके दिमाग में कोई बिजनेस चल रहा चले वो भी अच्छी बात है, कुछ लोग डिपेंडेंट हैं यानी उनका ब्रेड एंड बटर ही म्यूज़िक है तो वो भी ठीक है, लेकिन म्यूज़िक जो है ना वो आप ज़्यादा खुल के तब कर सकते हैं जब आपके अंदर म्यूज़िक है और आप उस फील को सुनाना चाहते हैं लोगों को जो आप बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको मज़ा करवाती है। पैसे आप पैसे वैसे आ जाते हैं ऑनेस्टली, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे लोग सुनेंगे वो स्टैंड आउट कर जाएगी लोगों को पसंद आ जाएगी, तो फिर पैसों की, फिर पैसे आपकी फ़िक्र करेंगे, आप पैसों की फ़िक्र नहीं करेंगे, तो ये सीन है। पाकिस्तान में मैं मुझे कराची बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे लाहौर बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी तो मैं, वैसे तो मैं लाहौर में पैदा हुआ और मैंने जो बेसिक मेरी तालीम है और जो सब कुछ है मेरी, मैं पला बड़ा हूँ लाहौर में हूँ, और कराची भी मैंने, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत से दोस्त हैं, सब जितने मेरे जान पहचान के लोग हैं मेरे सब वहाँ पे हैं, फैंस मेरे बहुत सारे हैं वहाँ पे। और मज़े की बात यह है कि पंजाबी मैं सॉन्ग ज़्यादा गाता हूँ, और कराची से मेरी एक बहुत अच्छी तादाद जो है ना फैंस की बहुत ज़्यादा है, और मुझे बड़ी हैरानगी और ख़ुशी भी होती है कि पंजाबी नॉर्मली कराची में जो है ना वो बोली नहीं जाती, वहाँ पर उर्दू बोली जाती है, लेकिन फिर भी लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और कुछ समझ के भी, कुछ जिन लोगों को नहीं भी समझ आती सब वो करते, तो जो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और जो मेरी फेवरेट जगह रहने के लिए ऑब्वियसली जहाँ मैं पैदा हूँ लाहौर है और हमेशा रहेगी, हाँ इससे कुछ बदल नहीं सकता।
दिल सी रे आ मेरे कोल ना बे मेरे
ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं ये शो और मैं हूँ सादिया ज़ेबरान झा और आप गुफ्तगु सुन रहे हैं गुलुकार रिजवान अनवर की। कोई मौसीकी का आला जो आप बजा सकते हैं?
मुझे गिटार बजाना आता है लेकिन वो मुझे इतना आता है कि मैं कंपोजिशंस बनाने के लिए ना मुझे जितना आना चाहिए मुझे उतना आता है तो मैं वो उतना सा बजा लेता हूँ कि मतलब खुद भी इंजॉय कर लूँ, किसी दोस्तों में बैठा हूँ थोड़ा सा अगर इस तरह का माहौल है तो हम लोग थोड़ा इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुझे अच्छा गिटार बजाना नहीं आता।
मौसीकी की बाकायदा तरबियत ली है क्या आपने?
मौसीकी की कोई तरबियत हासिल नहीं की मैंने, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सिर्फ मैडम नूर जहाँ, मोहम्मद रफ़ी, नुसरत फ़तेह अली खान और पॉप म्यूज़िक में अगर रॉक साइड पे आते हैं जुनून को सुना है मैंने बहुत ज़्यादा। अब भी आजकल अरिजीत बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे, पपोन है बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसके अलावा सिकविंदर जी हैं, सोनू निगम जी हैं, सबको सुन के जो जिस तरीके से वो गाते हैं कोशिश करता हूँ कि वो फील को कैच करूँ किसी तरीके से समझूँ वो। समटाइम तो समझ आ जाती है, समटाइम्स यू नो प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो प्रैक्टिस मेरी ये है कि मैं दिन में बाकायदा बाजे पे रियाजत नहीं है मेरी लेकिन मैं गिटार पे गाने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ना वो गाता हूँ ताकि मेरा गला जो है ना वो अपनी जगह पे रहे, और यू नो ये प्रैक्टिस है मेरी बेसिकली। कोई भी गाना मैं उठा लेता हूँ गा लेता हूँ और कहीं पर भी बैठ के हम लोग दोस्त अपना थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं हम लोग।
ये बताइए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जगह बनाए रखना कितना आसान और मुश्किल है?
इंडस्ट्री में जगह बनाना भाई बहुत मुश्किल है, ये ठीक ठाक पैसों यानी इन्वेस्टमेंट का काम है तो आपको मतलब कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप वही बात मैंने अभी इससे पहले भी आपको जवाब दिया है कि आप थोड़ा सा कुछ अर्से के लिए गायब होते हैं तो लोग भूल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, आप फिज़िकली ऑब्वियसली आप अगर सिर्फ म्यूज़िक पे फोकस कर रहे हैं तो आपके जो दूसरे काम है अदर देन कोई जॉब है कोई बिजनेस है एनीथिंग तो फिर वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो वो फिर ये टाइम इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ठीक ठाक पैसे भाई इन्वॉल्व होते हैं अच्छी रिकॉर्डिंग्स के लिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो फिर यू नो कि मुझे लगता है कि आसान नहीं है इस सेंस में, लेकिन तो अगर तो आप एक अच्छे कंपोज़र हैं अच्छा सिलसिला है तो हम जगह बना सकते हैं। सोशल मीडिया आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं, बस थोड़े मुस्तकिल मिजाजी और थोड़ा अच्छा काम और लगन मेहनत ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और खुदा का करम होना बड़ा ज़रूरी है और आजजी बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में, जो जिस इंसान में आर्टिस्ट में आजजी नहीं है और वो ज़रा आप से बाहर है तो वो भी किसी काम की चीज़ नहीं।
बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, थैंक यू सो मच।
पर जो होंगे कभी ना।
चलता भी जाऊं मैं कैसी है ये बेखुदी नरम नरम सी है ये चुभन सी छूने दे पासा ले दे सोचो मैं गुमसुम ख्वाब में गुनगुन खुद में ढल जाने दे मन रे मन रे
सुनी गुलुकार रिजवान अनवर की कैसी लगी आपको ये बातचीत और कैसे लगी उनके गीत आप हमें जरूर बताइएगा और अब चलते हैं एंटरटेनमेंट राउंडअप की जानिब हॉलीवुड गुलुकारा मैडोना ने अपनी जिंदगी पर फिल्म बनाने और इसे खुद ही डायरेक्ट करने का ऐलान किया है मैडोना ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि उनकी जिंदगी एक हैरत अंगेज सफर है और इस सफर की चार दहाइयां चकाचौंध से जुड़ी हुई हैं जो दिलचस्पी से खाली नहीं वो चाहती हैं कि इस सफर से लोगों को भी आगाह करें मैडोना गुलुकारा मौसीकारा और अदाकारा होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी किसी तफरीही पार्क में नस्प और हवा में बलखाती पटरियों पर हिचकोले लेती ट्रेन या रोलर कोस्टर की तरह है फिल्म के जरिए उनके मद्दा ऐसी कई बातों और राजों से पर्दा उठते देखेंगे जो अभी तक किसी को मालूम नहीं उनके बकौल इन राजों से आगाही और मुतासिरकुन वाकयात को बयान करने वाला भला उनसे बेहतर और कौन हो सकता है इसलिए वो खुद इस सफर को फिल्मी स्क्रीन पर पेश करना चाहती हैं वो कहती हैं कि इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी मौसीकी होगी क्योंकि उनके बकौल आज मैं जो भी हूँ मौसीकी की बदौलत हूँ और मेरा फन इसी के सहारे जिंदा है खबर साइदारे AFP के मुताबिक मैडोना का शुमार उन फिल्मी शख्सियात में होता है जिनकी जिंदगी के कई पहलू मख्फी रहे उन्होंने 62 साल जिंदगी में मजहबी मामलात की कभी परवाह नहीं की मुआशरती पाबंदियों को वो कभी खातिर में नहीं लाई और न ही उन्होंने कभी रवायात की पासदारी की मैडोना का शुमार मुतासिर करने वाली शख्सियात में होता है उनकी 30,35,00,000 एल्बम्स फरोख्त हो चुकी हैं ये शो पेश किया जा रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्टारकास्ट पर मबनी फिल्म सीरियस मैन को 2 अक्टूबर को डिजिटली रिलीज किया जाएगा इस फिल्म को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया है वेबसाइट glamsham.com के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि मैंने 20 साल सुधीर मिश्रा के साथ काम करने का इंतजार किया है और ये मेरा देरीना ख्वाब था जो पूरा हुआ है वो कहते हैं कि नाजरीन भी मेरे साथ इस सफर में शरीक हों सीरियस मैन इसी नाम के नावल से माखूज है जिसके मुसन्नफ हैं मनु जोसेफ आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये शो सुन रहे हैं और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा बाबा आजमी की हिदायतकारी में बनी फिल्म मीर अक्सम कोएलिशन ऑफ साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2020 की ओपनिंग फिल्म होगी इस फिल्म की कहानी मिजवान की एक छोटी लड़की के गिर्द घूमती है मिजवान मरहूम शायर कैफी आजमी की जाय पैदाइश है ये फेस्टिवल 3 से 17 अक्टूबर को ऑनलाइन मुनाकिद होगा वेबसाइट glamsham.com के मुताबिक फिल्म में दानिश हुसैन और आदित्य सुबैदी के साथ साथ सुदीप्ता सिंह, राकेश चतुर्वेदी ओम शामिल होंगे, जबकि नसीरुद्दीन शाह मेहमान अदाकार के तौर पर शामिल होंगे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे मुसलमान बाप की है जो अपनी बेटी के भारतनाट्यम में एक रकासा बनने के ख्वाब को पूरा करने की जद्दोजहद करता है और मजहबी और समाजी रुकावटों को अबूर करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं और मैं हूँ सादिया ज़ेब्रांझा। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazebranjha.voaurdu पर। ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu। और अब आपका पसंदीदा ब्यूटी सेगमेंट सुनते हैं मारिया तारड़ से।
आज हम बात करेंगे फेस मास्क्स की, जो कि घर पे ही बनाए जा सकते हैं घर की ही चीज़ों के साथ, और डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट किस्म के फेस मास्क्स ज़रूरी होते हैं। तो हम प्राइमरीली बात करेंगे ड्राई स्किन की, कॉम्बिनेशन स्किन की और ऑयली स्किन की। तो पहले हम शुरू करते हैं ड्राई स्किन से। आप ड्राई स्किन के लिए कोई भी ऐसी हार्श चीज़ ना लें जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए या ज़ख़म पैदा करे। जब हम कोई स्क्रब लेते हैं या जब हम कोई स्क्रब यूज़ करते हैं, तो असल में क्या हो रहा होता है कि वो स्क्रब छोटे छोटे आपकी स्किन पे मार्क्स छोड़ता है या ज़ख़म करता है, और वो ज़ख़म जो से होते हैं जब वो रिजुविनेट होते हैं, जब वो सही होते हैं, तो हमारी नई स्किन आती है और हमारी नई स्किन बहुत ही अच्छी और स्मूथ आती है। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इस तरह के स्क्रब्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन में इतनी पावर नहीं है, इतनी इलास्टिसिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सके। तो लिहाजा बहुत ही सॉफ्ट सा हमने मास्क लेना है। स्किन के जनरली बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई मतलब कि आपकी स्किन है, आप उसको प्यार से रखें, उसको साफ रखें, उसकी केयर करें, तो आपकी स्किन आपके लिए बहुत चमकेगी और अच्छी लगेगी। तो ड्राई स्किन की हम बात कर रहे थे। ड्राई स्किन के मास्क के लिए हम ऐसा करेंगे कि हम एक बनाना, एक केला जो कि हर मौसम में मिलता है, हर घर में होता है, एक केला लेंगे और उसमें थोड़ा सा शहद डालेंगे, हनी, और जितना प्योर आपका शहद होगा उतना ही बेहतर है। इन दोनों चीज़ों को आधा केला ले लें आप और एक चम्मच चीनी की चम्मच शहद की ले लें आप, इनको मैश कर लें और इनको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करके 15 मिनट अपने फेस पर लगा लें, और वार्म पानी से, नीम गर्म पानी से आप अपना मुंह 15 मिनट के बाद धो लें। आप खुद देखेंगे कि कितनी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज फील करेगी। अगर आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी ड्राई स्किन बहुत ही डल हो गई है और आपका दिल कर रहा है कि थोड़ा सा कुछ उसको रिजुविनेट किया जाए या उसको थोड़ा सा सॉफ्टन किया जाए, तो आप फिर शायद लें एक चमची, ज़रा सा ओटमील लें और ज़रा सा दूध लें, और इन चीज़ों को, ओटमील अगर घर में नहीं है आपके तो आप थोड़े से बादाम क्रश करके भी ले सकते हैं, और इन चीज़ों को अच्छी तरह क्रश करके तीनों चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करें। बस ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करें, बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने फेस की मालिश नहीं करें, क्योंकि इसमें अब हमने थोड़ा सा रफ़ कंपोनेंट डाल दिया, जो ओटमील है या आपके बादाम है वो थोड़े से रफ़ हैं और आप अपनी स्किन पर आराम से लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन स्किन की और कौन सा फेस मास्क कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे भी हम किचन की चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे और कोई ख़ास अजीब चीज़ें नहीं है, ये सब घर में मिलती हैं। हम थोड़ा सा दही लेंगे, एक बड़ा चम्मच दही का लेंगे और एक अंडे की सफ़ेदी, और इसको एक मिक्सिंग बोल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और ये आप अपने पूरे फेस पे लगाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और जब आपका फेस मास्क पूरा ड्राई हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, तो आप इसको नीम गर्म पानी के साथ अपना फेस वॉश कर लेंगे। इधर आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफ़ी टाइट हो गई है और जहाँ से आपको थोड़ी सी इलास्टिसिटी चाहिए वो वहाँ पे होगी। और आखिर में हम बात करेंगे ऑयली स्किन के लिए कौन सा मास्क बेहतर रहेगा। इधर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, अक्सर ऐसे होता है कि जब हम फेशियल्स करते हैं या हम अपनी फेस वॉश करते हैं, तो हम बहुत हार्श स्टीम लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हैं। ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं चाहिए, ये आपके ऑयल ग्लैंड्स को और एक्टिवेट करती है. आपको ये नहीं चाहिए. आप अगर स्टीम ले रहे हैं तो आप काफ़ी दूर होकर स्टीम लेंगे, मतलब कि आपके फेस को थोड़ी सी गर्माइश पहुँचे, ऐसा ना हो कि आप पसीनों से भर गए हैं आपका फेस. इधर हम लेंगे अगेन किचन के इंग्रेडिएंट्स हैं, लेमन और दही, नींबू और दही, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे. मिक्स करके वही बात है कि हम जौन सा है अपने फेस पे 10 से 15 मिनट तक लगा लेंगे, और जब ये ड्राई हो जाए तो हम अपने फेस को नीम गर्म पानी से धो लेंगे. ऑयली स्किन के लिए अगर आपको कभी ऐसा लगे जैसे आप सिर्फ उसके टॉप लेयर के ऑयल उतारना चाहते हैं, तो आप अपने क्यूकम्बर लें, खीरा जिसको हम कहते हैं, खीरे लें, उनके पतले पतले स्लाइस करें, और एक स्लाइस को जैसे आप फेस पे मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा ऑयल न्यूट्रलाइज हो रहा है. ये थी हमारे होममेड मास्क की लिस्ट.
ये थी मारिया तारेट, जिनसे आपने ब्यूटी टिप्स सुनी, और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से आप ये शो सुन रहे हैं. और अब बारी है आपके खतूत की. ये खत आया है जनाब, पैगाम आया है बल्कि, रहमत खान का डीजी खान से. लिखते हैं कि आजकल पहले से ज्यादा वक्त है क्योंकि कोरोना ने बाकी मुल्कों के साथ साथ यहाँ भी हालात बदल दिए हैं. तो मैंने सोचा कि क्या करूँ. मैं ये बताता चलूँ कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ और आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, और इससे पहले छुट्टियाँ थीं तो मैंने बेमसरफ दिन रात गुजारने के बजाय कुछ मुख्तलिफ और फ़ायदेमंद करने का सोचा. हमारे घर के पीछे सहन में झाड़ियाँ उगी रहती थीं हमेशा ही से, तो मैंने इसे पहले तो साफ़ किया, फिर क्यारियाँ बनाईं, और रोज़ाना के इस्तेमाल की चीज़ों की एक फहरिस्त बनाकर बीज खरीद कर लाया और वहाँ लगा दिए. और अब वहाँ झाड़ियों की जगह धनिया, पुदीना, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू और पालक उगाई है. अरे वाह रहमत खान साहब, आपके पास तो काफ़ी जगह थी, आपने तो तकरीबन इस्तेमाल की हर चीज़ ही उगा ली है. बाजी मुझे इन सबको देखकर इतनी खुशी होती है, ये साफ़ सुथरी तो है ही, बहुत सस्ती भी हैं, हर हांडी में डलती हैं ये चीज़ें. लिखते हैं, मेरी अपने तमाम सामेईन से ये गुजारिश है कि वो भी ये सब नहीं तो थोड़ी बहुत सब्जियां अपने घर में उगा ही लें. बहुत अच्छी बात है रहमत साहब, बल्कि हमने एक बार पूरा शो भी किया था कि आप घर में क्या क्या उगा सकते हैं और कैसे. ये तो बहुत ही अच्छा मसरफ निकाला आपने. नादिया अशरफ ने दो चक से लिखा है कि बाजी मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम सुना और मारिया बाजी के बताए हुए टोटके इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत शुक्रिया उनका, और अब इंतजार रहेगा कि वो हमें और क्या नया बताएंगी. बिल्कुल नादिया, आप हमारा शो सुनती रहिए जो हर जुमे, हफ्ते और इतवार को नशर होता है पाकिस्तान में रात के 9 बजे, और आप हमें मैसेज भेज सकती हैं facebook.com/sadiazebranjhavoaurdu पर, और ताज़ा तरीन खबरें और वीडियोज़ देख सकती हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu. और आपको बताते चलें कि आप ये शो सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से, और मैं हूँ सादिया जिब्रान झा. अगला पैगाम है नसीर अहमद का काला शाकाकू से. लिखते हैं, गुज़श्ता प्रोग्राम में कुर्बान की बातें सुनकर बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ और सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ जिससे दूसरों को मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँचे. बाजी बहुत सोचने के बाद मैंने आपकी बातों को सोचते हुए अपने महल्ले में बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे हम सब मिलकर अपने गली महल्ले को साफ रख सकते हैं, और ख़ास तौर पर प्लास्टिक के शॉपर्स, जिन्हें आपने कहा था कि शॉपिंग बैग्स कहते हैं, से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि ये दहाइयों तक गलते सड़ते नहीं और कैसे माहौल के लिए नुकसानदेह हैं. सब बच्चों को साथ मिलाकर मैंने हफ्तावार सफाई का प्रोग्राम तरतीब दिया और हम सब ने गलियां साफ रखने और साफ करने का काम शुरू किया है. और यकीन करें बाजी, इस मुहिम के बाद मैंने खुद को कारामंद सा महसूस किया और लगा कि मैंने कोई तामीरी काम किया है जिससे सबको फायदा पहुंचा है. लिखते हैं, हम ये काम हमेशा जारी रखेंगे. बहुत अच्छा लगा ये सुनकर नसीर, कि आपने ना सिर्फ हमारा शो सुना बल्कि इससे मुतासिर होकर कुछ मुख्तलिफ काम करने का सोचा, और खुशी इस बात की भी है कि अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी ये सिखाया है कि कैसे अपने इलाके को साफ रखा जा सकता है. हमें कुछ तस्वीरें भी आप पोस्ट कीजिएगा. फेसबुक पेज का तो आपको पता ही है, जहां आपने ये पैगाम भेजा है वहीं आप हमें तस्वीरें भी भेज सकते हैं. हुमैरा दिलशाद ने रावलपिंडी से पैगाम भेजा है. लिखती हैं कि मेरे नाक और माथे का हिस्सा ऑयली है और जब मैं मेकअप करती हूँ तो थोड़ी ही देर में वहाँ से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और फाउंडेशन बिल्कुल गायब हो जाता है. तो प्लीज़ मारिया, आप इसे पूछ के बताइएगा कि क्या करूँ. तो लीजिए, मारिया से ही सुन लीजिए अपने सवाल का जवाब.
तो पहले तो मैं आपको कहूँगी कि आपकी स्किन प्रेप और आपकी बिफ़ोर मेकअप वाली जो उनकी प्रिपरेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप मॉइस्चराइज करें अपने फेस को. आई नो कि ऐसे लगता है जैसे मैं ऑलरेडी ऑयली हूँ तो और मॉइस्चराइजर क्यों लगाऊं, लेकिन बेसिक पॉइंट यहाँ ये है कि हम आपकी स्किन की ऑयल ग्लैंड्स को इक्वलाइज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सारे फेस पे एक ही अमाउंट की ऑयल हो और एक ही अमाउंट की ऑयल ग्लैंड्स काम करें. तो डेफिनेटली मोस्टली आप अपनी स्किन केयर रूटीन की ज़रा केयर करें. मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपनी स्किन पे कोई फेस पाउडर लगाएंगी, और फेस पाउडर के बाद आप लगाएंगी फाउंडेशन, और फिर आप फेस पाउडर लगाएंगी. लेकिन आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो जो फेस पाउडर है वो आपकी स्किन से मिलता जुलता हो, बहुत ही लाइट या बहुत ही डार्क ना हो, और जितना भी एक्सेस है वो आप ब्रश ऑफ कर लें. तो अब चलते हैं हम प्रोडक्ट्स की तरफ. सेटिंग पाउडर ले सकते हैं, सेटिंग स्प्रे ले सकते हैं. आप यूज़ कर सकती हैं उसका सेटिंग स्प्रे और सेटिंग पाउडर.
इसके साथ ही हमारा आज का ये शो खत्म होता है. आप हमें मैसेज भेज सकते हैं facebook.com/sadiazebranjhavoaurdu पर. ताज़ा तरीन खबरों और वीडियो रिपोर्ट्स के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल है @voaurdu. अगले हफ्ते आपसे हवा के दोष पर फिर मुलाकात होगी. सादिया ज़ेब्रांजा को वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से इजाजत दीजिए. अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगेबान.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है. आप अभी सुन रहे थे खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खुसूसी रेडियो प्रोग्राम. ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया गया.